जैसे ही नंदिनी ने इप्सिता की शादी तय होने की बात सुनी, वो स्तब्ध होकर बोली, क्या क्या कहा तूने? शादी? लेकिन यार, तेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी ऐसी कैसे शादी तय कर सकते हैं? तूने क्या बोला उन्हें? साफ साफ शादी के लिए मना कर देती ना? इप्सिता ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? हम भला मम्मी पापा की बात को मना करेंगे? तुम जानती हो ना, हम अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा सकते। हमारे पास शादी ना करने का या फिर मना करने का कोई विकल्प ही नहीं है, नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे पास विकल्प नहीं है? तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो सकती हो? इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा। आज नहीं तो कल, और किसी न किसी से तो शादी होनी ही है, इसलिए अपने मम्मी पापा के खातिर हम ये शादी कर लेंगे, नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। पागल हो गई हो तुम? और तुमने मेरे साथ मिलकर अपने भविष्य की जो योजना बनाई है उसका क्या? और सबसे बड़ी बात इप्सिता, तुम्हारा सपना, तुम ऐसे कैसे अपना इतना बड़ा सपना छोड़ सकती हो? इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मतलब तुम अपने मम्मी पापा के खातिर अपने सपनों का गला घोट दोगी? इप्सिता ने कहा। नंदिनी, तुम नहीं जानती, एक शाही परिवार में होना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें अपने साथ साथ अपनी फैमिली और अपने पूरे राज परिवार को ध्यान में रखना होता है, और हम शायद कुछ दिनों के लिए ये बात भूल गए थे कि हम एक राज घराने की बेटियां हैं, नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। मतलब तूने अपने सारे सपनों की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है? दैट्स नॉट राइट यार, मैं तो अभी भी तुझे यही सुझाव दूंगी कि तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो और अभी फिलहाल के लिए शादी से मना कर दो, इप्सिता ने निराश होते हुए कहा। एक ही बात को बार बार बोलना बंद करो नंदिनी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानती मेरे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें एक असली राजकुमारी की तरह रखा है और हमें इतनी आलीशान जिंदगी दी है। हमारे मुंह से कोई बात निकल नहीं पाती थी और हमारी सारी चीजें, सारी जरूरतें एक सेकंड में पूरी हो जाती थीं। उन्होंने आज तक कभी भी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, यहाँ तक कि उन्होंने हमें उदयपुर से बाहर दूसरे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा, जबकि यहाँ की लड़कियों को घर से इतनी दूर जाकर रहने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमारी ये जिद भी पूरी की। अब तुम ही समझ जाओ कि वे दोनों हमें कितना प्यार करते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं, और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा। अरे तो मैं भी तुम्हें कहाँ उनके खिलाफ जाने के लिए बोल रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी बात रखने के लिए, नंदिनी बोल ही रही थी कि इप्सिता ने उसे चुप कराते हुए कहा। रहने दो नंदिनी, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम सोकर उठे हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हम फ्रेश होने जा रहे हैं, बाय। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं नीचे नाश्ते की मेज पर मिस्टर और मिसेस सूर्यवंशी आपस में बातें कर रहे थे। इप्सिता के पिता ने कहा, सुहासिनी जी, आपकी रानी सा से बात हो गई ना? इप्सिता की माँ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। जी हाँ, हमने उनसे बात कर ली है और उन्होंने शाम को इप्सिता और कुंवर सा की मुलाकात तय कर दी है, वो भी अपने ही होटल में। और मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि हम अपनी इप्सिता को अकेले नहीं भेजेंगे, इप्सिता के साथ उसका बॉडीगार्ड संजय जरूर जाएगा, और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, वे तो बस चाहती हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ आराम से बात कर सकें और एक दूसरे को थोड़ा जान सकें। इप्सिता के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो अच्छी बात है, जितनी जल्दी वे दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे तो आगे सब उतना ही अच्छी तरह से होगा। इप्सिता अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और उसने जैसे ही अपने माँ बाप को ये सारी बातें करते हुए सुना, वो वहीं सीढ़ियों के पास ही रुक गई। तभी सुहासिनी जी ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, अरे इप्सिता बेटा, इधर आइए, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। इप्सिता थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन तभी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आई और कुर्सी खिसकाकर वहां बैठ गई। उसने भी माँ से मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, भैया कहाँ हैं? इप्सिता के पिता ने सुहासिनी जी के जवाब देने से पहले ही कहा, उदय ऑफिस चला गया है, आज हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी लेकिन हमें उठने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए हमने उदय को जल्दी ऑफिस भेज दिया, बस हम भी निकलने ही वाले हैं, आप अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें करिए। इतना बोलकर इप्सिता के पिता भी ऑफिस के लिए निकल गए। इप्सिता धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी और तभी सुहासिनी जी ने कहा, बेटा हमें आपसे ये बात स्पष्ट करनी थी। इप्सिता अपनी माँ की बात सुनकर कहते कहते रुक गई और उसने धीमी आवाज में कहा, जी मम्मी, बोलिए क्या बात करनी है आपको हमसे? इप्सिता की माँ ने उठकर उसके बगल में आकर बैठते हुए कहा, इप्सिता, आप हमारे इस फैसले से खुश तो है ना? इप्सिता को समझ नहीं आया वो सच बोली या फिर झूठ, ये सोचकर उसने अपनी माँ के उम्मीद भरे चेहरे की तरफ देखा, जिसे देखकर इप्सिता ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी इप्सिता की माँ काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी, हम जानते थे कि हमारी बेटी को हमारे फैसले से कभी एतराज हो ही नहीं सकता। अब आप जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाइए, आपको कुंवर सा से मिलने जाना है।
इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसे खांसी आने लगी और उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या क्या बोल रही हैं आप मम्मी आज? सुहासिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आज ही तुम्हें लंच पर कुंवर अभिमन्यु राजवंशी से मिलना है, इसलिए जल्दी से नाश्ता करो और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। इप्सिता अपनी माँ की बात सुनकर सोच में डूब गई और उसे उसके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोच रही है। इप्सिता की माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप बेटा? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप नाश्ता करने लगी। और तभी सुहासिनी जी ने कहा, और हाँ आप सूर्यवंशी परिवार की इकलौती बेटी हैं, इसलिए सबसे बेहतरीन ड्रेस पहनकर कुंवर सा से मिलने जाइएगा। इप्सिता ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, इस समय उसने साधारण जीन्स और टॉप पहना हुआ था। इप्सिता ने असमंजस में कहा, लेकिन मम्मी हमारे इन कपड़ों में क्या बुराई है? सुहासिनी जी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि आप एक राजघराने की बेटी हैं और राजघराने की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर अपने होने वाले पति के सामने नहीं जाती हैं। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांध ली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। और तभी सुहासिनी जी उठकर खड़ी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को बड़े ही स्टाइल के साथ अपने हाथ में पकड़ा और वहां से वे सीधे अपने कमरे में चली गईं। बार बार राजघराने और कुंवर की बात सुनकर इप्सिता अब तक काफी चिढ़ चुकी थी, इसलिए अपनी माँ के वहां से जाते ही इप्सिता ने खुद से बात करते हुए चिढ़कर कहा, पता नहीं कौन है ये कुंवर सा अभिमन्यु राजवंशी, हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना है, पता नहीं हम उनसे मिलकर क्या बात करेंगे। इप्सिता नाश्ता करने के बाद सीधे अपने कमरे में गई और अपने बड़े से अलमारी को खोलकर खड़ी हो गई। उसने अपनी सारी जीन्स टॉप और वन पीस ड्रेस को देखते हुए कहा, अब हम इनमें से ऐसा क्या पहने जो हमें शाही रूप दे? मम्मी भी ना हमें छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन दे देती हैं। इप्सिता ने एक गुलाबी रंग की वन पीस लॉन्ग फ्रॉक ड्रेस निकाली और उसे पहनकर कमरे में आई और बड़े से आईने के सामने खड़े होते हुए बोली, आई होप ये ड्रेस मम्मी को मेरे ऊपर ठीक लगे।
इप्सिता इतना ही बोली थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम आपको ये ड्रेस पहनकर कुंवरसा के सामने कभी नहीं जाने देंगे, बदल दीजिए इसे बेटा। इप्सिता ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनी वो पीछे घूमकर अपनी ड्रेस की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों मम्मी, हमारे इस ड्रेस में क्या बुराई है? इप्सिता की माँ के पीछे एक नौकर खड़ा था जो उनके पीछे पीछे चलकर इप्सिता के कमरे के अंदर आया। इप्सिता ने उस नौकर के हाथ में तीन चार शॉपिंग बैग देखे। सुहासिनी जी ने उस नौकर की तरफ देखकर उन बैग्स को इप्सिता के सामने रखने का इशारा किया और वो नौकर अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। क्रमशः